उन्नति का मूल मंत्र ब्रह्मचर्य। न तपस्ता पित्याहु ब्रह्मचर्य तपोत्तमम् ऊर्ध्वरेता भवेद्यम तु से देवो न तु मानुष। अर्थात जननेन्द्रिय संयम द्वारा मनुष्य देवताओं के गुण को प्राप्त हो जाता है, उसका दैहिक मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का पूर्ण विकास होता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म अर्थात परमात्म तत्व में विचरण करना, अर्थात अपने संयम निग्रह शुद्धाचरण द्वारा उसकी ओर मन वचन कर्म द्वारा अग्रसर होना। आज हम जीवन की इस उच्च भूमिका में तो नहीं उठ पाते, इसलिए ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ है वीर्य रक्षा, जननेन्द्रिय का संयम, आत्मिक बल की वृद्धि। वीर्य की रक्षा करते हुए वेदाध्ययन पूर्वक ईश्वर चिंतन करने का नाम ब्रह्मचर्य है। दूसरे शब्दों में जिसका वीर्य ऊर्ध्वरेता है वह ब्रह्मचारी है, क्योंकि सब इंद्रियों से अधिक चंचल जननेन्द्रिय का संयम सबसे अधिक कठिन है। ब्रह्मचर्य वह तप है जिसके द्वारा ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है। यह एक प्रकार का व्रत है जिसके द्वारा मनुष्य को अपने वीर्य की रक्षा कर उच्च ईश्वरीय जीवन की साधना और तदनुसार बुद्धि का विकास करना पड़ता है। शुद्ध आचरण द्वारा वीर्य की मन वचन कर्म द्वारा रक्षा करते हुए शास्त्रों में वर्णित सात्विक जीवन व्यतीत करना ब्रह्मचर्य है। भगवान शंकर कहते हैं ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण करना, उसकी रक्षा करना ही उत्कृष्ट तप है। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में दूसरी कोई हो नहीं सकती। अखंड वीर्य को धारण करने वाला पुरुष इस लोक में प्रत्यक्ष देवता ही है। ब्रह्मचर्य से बुद्धि प्रखर होती है, इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं, स्मरण शक्ति तीव्र होती है, मनन शक्ति बढ़ जाती है, चित्त में एकाग्रता आती है, आत्मिक बल बढ़ता है, आत्मनिर्भरता साहस निर्भीकता आदि देव दुर्लभ गुण स्वतः प्रसूत हो जाते हैं। विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य पालन से शरीर मन और आत्मा दृढ़ होती है। ऋषियों के अनुसार सांसारिक और पारमार्थिक उन्नति का मूल ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्मचर्य पालन से सुख आरोग्य और तेज बढ़ता है, बल और वीर्य में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य और दीर्घायु मिलती है। हमारा सुख तेज विद्या बल सामर्थ्य सब ब्रह्मचर्य पर ही आधारित है। शास्त्र कहता है जिस प्रकार समुद्र को पार करने का नौक उत्तम उपाय है, उसी प्रकार इस संसार से पार होने का उत्कृष्ट साधन ब्रह्मचर्य है। जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य रूपी तपस्या करते हैं और उत्तम विद्या एवं ज्ञान से अपने मन को पवित्र बना लेते हैं, वह संसार के समस्त दुखों कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। महान परिश्रम पूर्वक वीर्य का साधन करने वाले ब्रह्मचारी के लिए इस पृथ्वी पर भला किस कार्य में सफलता नहीं मिलती। ब्रह्मचर्य के प्रताप से मनुष्य मेरे ईश्वर के तुल्य हो जाता है। ब्रह्मचर्य परंतप अर्थात ब्रह्मचर्य ही सबसे श्रेष्ठ तपश्चर्या है। एक ओर चारों वेदों का फल और दूसरी ओर ब्रह्मचर्य का फल, दोनों में ब्रह्मचर्य का फल विशेष है। स्वामी सत्यदेव जी ने लिखा है वीर्य इस शब्द में जादू भरा है। इसके उच्चारण करने से श्रेष्ठ और सात्विक भावों का संचार होने लगता है। ईश्वर वीर्यवान है। रामचंद्र जी बड़े यशस्वी वीर्यवान राजा थे। भीष्म ने आयु भर वीर्य का संचय कर ब्रह्मचर्य धारण किया। इसी के प्रताप से भीष्म में इच्छा मृत्यु की शक्ति थी। वीर्य रक्षा ही संजीवनी है। शिवजी और शुक्राचार्य के ज्वलंत उदाहरण हमें उपलब्ध हैं। श्री हनुमान जैसे ब्रह्मचारी का बल स्फूर्ति और पुरुषार्थ आज भी विस्मय का प्रश्न बना है। संसार में वीर्यवती जाति ही अपना साम्राज्य स्थापित कर सकती है। संसार में जो कुछ भी निरोग सुंदर स्वरूपवान कांतिमय मनोहर है, जो कुछ वीरता ओज पराक्रम पौरुष तेज विशेषणों से प्रकट होता है, तथा धैर्य निर्भीकता बुद्धिमत्ता सौम्यता मनुष्यत्व आदि गुणों से जो विचार उत्पन्न होते हैं, वे सब वीर्य शब्द के अंतर्गत हैं। जैसे सूर्य संसार को प्रकाश देता है, वैसे ही वीर्य मनुष्य पशु पक्षी और वृक्षों में अपना प्रभाव दिखाता है। जिस प्रकार सूर्य रश्मियों से रंग बिरंगे फूल विकसित होकर प्रकृति का सौंदर्य बढ़ाते हैं, इसी प्रकार वह वीर्य भी अपने भिन्न भिन्न स्वरूपों में अपनी प्रभा की छटा दिखाता है। संसार वीर्यवान के लिए है। वीर्यवती जातियों ने संसार में राज्य किया और वीर्यहीन होने पर उनका नामो निशान मिट गया। जिन मुसलमान वीरों ने अपनी चमकती हुई तलवार से यूरोप एशिया में बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित किए थे, वे व्यभिचार आदि दोषों में फंसकर अपना सर्वस्व खो बैठे। जिन महाराष्ट्र शूरवीरों ने मुसलमानी राज्य को छिन भिन कर भारत में हिंदू राज्य स्थापित किया था, वे ही विषय भोग परस्पर की फूट तथा कलह के कारण अपनी सब आशाओं पर पानी फेर बैठे। यूरोप की बड़ी बड़ी जातियों का इतिहास भी इसी वीर्य की महिमा को बतलाता है। यूरोप की जिस स्पेन जाति ने नई दुनिया में अपनी विजय पताका उड़ाई थी, वही स्पेन समृद्धिशाली होने पर विषय भोग का शिकार बन गया और अपने उपनिवेशों को वीर्यहीनता के कारण खो बैठा। नित्य प्रति के जीवन में ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण का प्रभाव प्रत्यक्ष देखा जाता है। वीर्यहीन, डरपोक, काय, दीनहीन, रोगी और दुर्बल होता है। जिस व्यक्ति के शरीर में वीर्य नहीं है वह जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि वीर्य की एक बूंद नष्ट करना मृत्यु तथा एक बूंद धारण करना जीवन है। वीर्यवान पुरुषार्थी होता है, साहस और हिम्मत से बोल सकता है, कठिनाई का मुकाबला कर सकता है। वह उत्साही, सजीव, शक्तिशाली और दृढ़ निश्चयी होता है। उसे रोग नहीं सताते, वासनाएं चंचल नहीं बनाती, दुर्बलताएं विवश नहीं करती। वह प्रभावशाली व्यक्तित्व प्राप्त करता है और दया, क्षमा, शांति, परोपकार, भक्ति, प्रेम, वीरता, स्वतंत्रता, सत्य द्वारा पुण्यात्मा बनता है। धन्य है ऐसा ब्रह्मचारी। वीर्य का प्रचंड प्रताप। मनुष्य के रक्त में जो जीवाणु है उनका प्रमुख कारण वीर्य नामक तत्व है। रक्त में जो लाली है, जो चमक और आभा है, त्वचा में जो दमक है, उसका प्रधान कारण वीर्य तत्व ही है। वैदिक शास्त्र में वीर्य को मनुष्य शरीर का सार तत्व माना जाता है। हमारे भोजन से रक्त और रक्त से एक नियमित मात्रा में वीर्य की उत्पत्ति होती है। आयुर्वेद का मत है, भोजन के पचने पर रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से वीर्य उत्पन्न होता है। रस से लेकर मज्जा तक प्रत्येक धातु 5 रात, दिन और 1.5 घड़ी तक अपनी अवस्था में रहती है। तत्पश्चात 30 दिन, रात और 9 घड़ी में रस से वीर्य बनता है। साधारणतः 40 सेर खुराक से 1 सेर रक्त बनता है और 1 सेर खून से 2 तोला वीर्य बनता है। एक मनुष्य मास में 1 मन से अधिक भोजन नहीं खा सकता। इस प्रकार 2 तोला वीर्य 1 मास की कमाई है, जो मूर्ख और नासमझ लोग एक ही बार में नष्ट कर डालते हैं। कुछ व्यक्तियों के अनुसार 40 ग्रास आहार से 1 बूंद रक्त और 40 बूंद रक्त से 1 बूंद वीर्य तैयार होता है। रासायनिक रूप से वीर्य में खट तथा फॉस्फोरस की मात्रा अधिक होती है और ये दोनों जीवन तत्व शारीरिक पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। प्रारंभिक 15 वर्ष तक प्रकृति अपने नियंत्रण से वीर्य एकत्रित करती है। किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते वीर्य पकने लगता है और पुरुष में बाह्य तथा आंतरिक परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं। अंकोशों से बहिस्राव भी प्रारंभ हो जाता है। अंकोशों के अंतःस्राव से पुरुष में पुरुषत्व प्रकट होता है। ब्रह्मचर्य का अभिप्राय शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टि से इन जनन ग्रंथियों को स्वस्थ रखना है। जनन ग्रंथियों में जीवन बढ़ता रहता है। इसके संयम से आयु और स्वास्थ्य दोनों को लाभ होता है। यदि इन ग्रंथियों का अंतःस्राव होता रहे और शरीर में खपता रहे तो शरीर के अंगों का विकास होता है। वीर्य को नष्ट करने वाला नरकगामी होता है, जीवन भर रोगी, अभाग्यशाली और दुखी रहता है। वीर्य अत्यंत अनमोल वस्तु है। इसी के संचय से मनुष्य देवता बनता है। वीर्य के अभाव से मनुष्य की प्रत्येक प्रकार की उन्नति रुक जाती है। वीर्य चारों पुरुषार्थों का मूल है, मुक्ति देने वाला है। प्रकृति चाहती है कि वीर्य के द्वारा मनुष्य को दृढ़, मजबूत और पुरुषार्थी बनावे, मेधाशक्ति की अभिवृद्धि करे, दीर्घ जीवन, उत्साह, स्वास्थ्य प्रदान करे, आत्मा को बलवान बनावे। 25 वर्ष की आयु तक वीर्य कच्चा रहता है, किंतु इसके अनंतर ज्यों ज्यों वीर्य पकने लगता है, मनुष्य अपने आप को जीवन शक्ति से पूर्ण समझता है। जो व्यक्ति मन, वचन, काया से दृढ़ता पूर्वक ब्रह्मचर्य पालन करता है, उसी का वीर्य परिपक्व होता है। अंग अंग सौंदर्य से परिपूरित हो उठते हैं, मुख तथा कपोलों पर एक अभिनव आत्मा दृष्टिगोचर होने लगती है। वीर्य की परिपक्वता से पूर्व उसका अपव्यय करने से युवक आजीवन अकर्मण्य, पौरुषहीन और हीनत्व की भावना ग्रंथि से पूर्ण बनता है। वीर्य एक ऐसी पूंजी है जिसे बर्बाद कर आप बाजार में खरीद नहीं सकते, जिसके अपव्यय से आप ऐसे गरीब बनते हैं कि प्रकृति तक आपके ऊपर दया नहीं करती, आरोग्य लुट जाता है, आयु क्षीण हो जाती है। आपको एक नियमित प्रमाण में ही वीर्य की पूंजी मिलती है। यह भी आपके अपने संयम, पाचन, भोजन, व्यायाम का परिणाम होता है। इसके लिए आपको स्वयं मेहनत करती होती है। कोई आपको यह पूंजी उधार नहीं दे सकता, दया करके कोई यह अमूल्य पदार्थ आपको दान नहीं दे सकता। इसकी भिक्षा नहीं मांगी जा सकती। अतः सावधान, अपनी इस संचित पूंजी को संभाल कर खूब सावधानी से व्यय कीजिए। वीर्य नाश कर मृत्यु की परेशानी की ओर, रोग शोक की ओर न जाइए। वीर्य रक्षा द्वारा धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, बुद्धि, वैभव, दीर्घायु, संपन्नता का आनंद प्राप्त कीजिए। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक जिम्मेदारियां उठाने के लिए ब्रह्मचारी बनिए। वीर्यहीन युवकों के लक्षण। वीर्यहीन व्यक्ति संसार में जीवित नहीं रह सकता। ज्यों ज्यों वीर्य शक्ति क्षीण होती है, मानो मृत्यु का संदेश सुनाती है। वीर्यनाश द्वारा मृत्यु होती है, उसकी चेतावनी प्रकृति कई रूपों में देती है। यदि रोगी इस पर भी नहीं संभल पाते तो रोग शोक आदि व्याधि, शारीरिक दुर्बलताएं सामने आ खड़ी होती हैं। अतः यदि निम्न लक्षणों में से कुछ भी आप में हो तो बड़े सावधान रहें। वीर्य नाश करने वाले बालक में हीनत्व की दुर्बल भावना ग्रंथि बन जाती है, एक अव्यक्त भय उसके अंतर्मन में छिपा रहता है। वह अपने से बड़ों में आंख से आंख मिलाकर बातें नहीं कर सकता। औरतों की भांति उसकी आंखें जमीन पर लगी रहती हैं, वह छिपता फिरता है और अपराधी की भांति जनसमुदाय से बचता है। यदि वह हिम्मत कर बड़ों से बातें करना भी चाहता है तो ढीठ और असंस्कृत बनता है। वह जितना ही अपने आप को निर्दोष साबित करने का प्रयत्न करता है उतना ही धूर्त प्रतीत होता है। उसका किसी कार्य में जी नहीं लगता, सुस्त रहता है, स्वभाव चिड़चिड़ा, क्रोधी और रुक्ष बन जाता है। उसके मन में गंदे, अश्लील, कामी विचार हुड़दंग मचाते रहते हैं, मानसिक दुर्बलता बढ़ जाती है, स्मृति कमजोर हो जाती है। श्रृंगार प्रधान उपन्यास, सिनेमा, गंदे गीत, विषय वासना संबंधी पुस्तकों की ओर रुचि बढ़ जाती है, कुसंगति में रुचि होती है। वासना का तांडव प्रारंभ होता है और युवक किसी अव्यक्त वेदना से पीड़ित इधर उधर मारा मारा फिरता है। उसका मुख जो प्रसन्न रहना चाहिए था, दुखी और उदास बन जाता है। स्वभाव का माधुर्य कटु और रूखा हो जाता है। मुखमंडल निस्तेज बन जाता है। वीर्य के कारण रक्त में जो चमक और लाली होती है वह कम हो जाती है और त्वचा फीकी, पीली और खुरदुरी, कभी कभी काली बन जाती है। शरीर में कमजोरी, नेत्र व कपोल अंदर धंस जाना, मूछें पीली व लाल हो जाना, बाल सफेद हो जाना, कोई रोग न होने पर भी शरीर का जर्जर ढीला सा रहना, गालों पर मुहासे के दाग झाई, काले चकते पड़ना, जोड़ों में दर्द, तलवे तथा हथेली पसीजना, अपच और कब्जियत, रात्रि में स्वप्नदोष होना, पेशाब करते समय वीर्य निकल जाना, रीढ़ की हड्डी का अत्यधिक झुक जाना, एकाएक आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाना, मूर्छा जा जाना, नाक के कोने में कालिमा छा जाना, वृषण की वृद्धि तथा उनका बेहद लटक जाना, आवाज का मोटा, रूखा और अप्रिय बन जाना, सर में कमर तथा छाती में पुनः पुनः दर्द उत्पन्न होना, दांत के मसूड़े फूलना, मुंह से दुर्गंधी आना, ये वे शारीरिक विकार हैं जो अप्राकृतिक ढंगों से वीर्यपात करने वाले युवकों में अक्सर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मूत्र मार्ग में पीड़ा प्रारंभ हो जाती है, मूत्र थोड़ा थोड़ा कर बार बार आता है, गर्मी, प्रमेह, सुजाक इत्यादि निंद्य रोग घेर लेते हैं, स्वप्नदोष तो रोज रात को हो जाता है, मुंह पर मुहासे खूब निकलने लगते हैं, दिमाग में गर्मी छा जाती है, किसी भी उद्देश्य में सफलता नहीं होती, आयु क्षीण हो जाती है और आत्मग्लानि तथा पश्चाताप के कारण कभी कभी वीर्य का नाश करने वाला काल का ग्रास बन जाता है। वीर्य एक अनमोल जीवन तत्व है। जीवन में 2-4-10 बार को छोड़ कदापि किसी भी अवस्था में वीर्य नाश नहीं होना चाहिए। इस वीर्य संग्रह के बल पर मनुष्य देवता बन सकता है। बिना ब्रह्मचर्य के सामान्य मनुष्यों की तो क्या, इंद्र महाराज की भी दुर्गति हो सकती है। वीर्य मुक्ति प्रदाता, जीवन शक्ति, दीर्घायु, संपूर्ण सिद्धियां, स्वास्थ्य, श्रेष्ठता, स्वतंत्रता देने वाला अनमोल जीवन तत्व है। वीर्य को नष्ट करने वाला युवक अकाल से बच नहीं सकता। किशोरावस्था से यौवन में प्रवेश। 14 वर्ष के पश्चात प्रत्येक बालक एक नवीन जीवन में प्रवेश करता है। उसमें धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं। उसमें पुरुषत्व के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं, प्रजनन ग्रंथियों में वीर्य तेजी से बढ़ने लगता है, लड़कों के ऊपर के होंठ, ठोड़ी तथा जननेन्द्रिय प्रदेश में बाल उगाते हैं। वीर्य तेजी से बनना प्रारंभ हो जाता है। शुक्रकण बढ़ने लगते हैं। बहुत कम व्यक्ति शुक्रकण तथा वीर्य में अंतर समझते हैं। शुक्रकण अंडकोशों से उत्पन्न होते हैं, वीर्य कई स्रावों का नाम है। इसमें शुक्रकण शुक्राशय का स्राव, अष्ठीला तथा ऊपर की ग्रंथियों के स्राव मूत्रकण भी सम्मिलित हैं। इसमें फॉस्फोरस अधिक मात्रा में होती है। शुक्रकण जीवन तत्व से पूर्ण छोटे छोटे कीटाणु हैं जिनमें रजकणों से संयुक्त होकर नवजीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है। इनकी रक्षा से शरीर पुष्ट होता है। सादा और तपस्या में जीवन व्यतीत करने वाले बालक में किशोरावस्था देर से आती है, भोगविलासमय जीवन वाले बालक की दाढ़ी मूंछें शीघ्र उगाती हैं, आयु क्षीण होने लगती है। मानव जीवन के पूर्ण विकास के लिए इन तत्वों का संरक्षण ठीक तरह होना चाहिए। किशोरावस्था से यौवन में प्रवेश का समय बड़ा नाजुक होता है। यदि युवक संभल जाए तो ठीक, अन्यथा बिगड़ने और कुमार्ग पर जाने के लिए इतने प्रलोभन फैले हुए हैं कि अच्छे कुल के युवक भी बुरे मार्ग पर जा सकते हैं। माता पिता तथा गुरुजनों का कार्य तथा उत्तरदायित्व महान है। उन्हें युवक की मनोभावनाओं, कामवासनाओं के उद्दाम प्रादुर्भाव, विपरीत लिंग वाले व्यक्ति की ओर आकर्षण को समझना चाहिए। युवक को एक साथी के रूप में मार्ग प्रदर्शन करना चाहिए। यह तीखी नजर रखनी चाहिए कि किशोर हस्तमैथुन, गुदामैथुन, लिंगेंद्रिय की निर्बलता, स्वप्नदोष, प्रमेह, व्यभिचार आदि का शिकार न बन जाए। आजकल समाज में ऐसी शैतान मंडली दुष्ट प्रकृति के लोगों की कमी नहीं है जो किशोर को कुमार्ग पर ले जाने में नहीं हिचकते। छात्रावासों तक में ऐसे दुष्ट व्यक्तियों का वास रहता है जो किशोरों को कुमार्ग पर लगा देते हैं। उनकी कच्ची आयु में ही वासना प्रदीप्त हो उठती है, अप्राकृतिक ढंग से वीर्यपात होना प्रारंभ होता है, वे अनर्गल औषधियों का सेवन करते हैं, उससे मूत्र रोग बढ़ते हैं, स्वप्नदोष पुनः पुनः होता है, वीर्यपतला पर जाने के कारण बूंद बूंद कर मूत्र मार्ग से नष्ट होने लगता है, शरीर की हड्डियों में पीड़ा होती है, कांपी आने लगती है, यहाँ तक कि भरी युवावस्था ही में शरीर जर्जर होकर मृत्यु हो जाती है। प्रकृति का यह नियम है कि जितनी देर से यौवन आता है और उसका उपभोग प्रारंभ होता है, उससे चौगुने समय तक आयु रहती है। यदि 50 वर्ष तक एक बिंदु भी वीर्य नष्ट न किया जाए या इससे अधिक अवस्था तक इस धन का किफायतसारी से उपभोग किया जाए तो मनुष्य 100-150 वर्ष तक मजे में जी सकता है। यौवन तो वीर्य पर निर्भर है। वीर्य की रक्षा कीजिए, यौवन की रक्षा हो जाएगी। वासना 25 वर्ष की आयु में जागृत होगी। यदि अस्वाभाविक जीवन न बिताया जाए, शरीर जब पूर्ण परिपक्व हो जाए तभी विवाह करना ठीक है। डॉक्टर एल्बर्ट ने लिखा है, घोड़े पर चढ़ना, सीने की मशीन को पैरों से चलाना, अधिक इंद्रिय स्पर्श, बाइसिकल चलाना, अधिक रेलगाड़ी की सवारी से उत्तेजना होती है और यह उत्तेजना आगे चलकर किशोर को हस्तमैथुन को और प्रवृत्त कर देती है। बड़े बड़े घरों में दुष्ट नौकर बच्चों की भावना को जागृत कर उन्हें कुमार्ग पर लगाते हैं। कुसंग, गंदी पुस्तकें, सिनेमा, नग्न तस्वीरें, कुत्सित कल्पनाएं अस्वाभाविक पतन के अन्य कारण हैं। सिनेमा ने किशोर, युवकों तथा विद्यार्थियों का जितना अनैतिक पतन किया है, इतना शायद अन्य कोई भी न कर सकता था। सिनेमा तो शैतान का जादू, कुमार का आकर्षक कुआं, कुत्सित कल्पनाओं का भंडार है। यह फैशनेबल शराब आज के युवकों को खोखला बना रही है। इसी के कारण छोटे किशोर अनेक गंदी बातें सीख लेते हैं। ऐसे प्रेम मिलन के दृश्य दिखाए जाते हैं, ऐसे ऐसे गंदे गाने गाए जाते हैं जिन्हें सुनने से मुंह लज्जा से नीचे झुक जाता है। आज हमारे सिनेमा घर व्यभिचार, धूर्तता, मायाचार और कामोत्तेजक वातावरण से भरे हैं। गंदे फिल्मों की भरमार है और डैक तो यह है कि लोग सिनेमा जाना बुरा नहीं समझते। सिनेमा अभिनेत्रियों के चित्र इतने बिकते हैं, गंदे उत्तेजक उपन्यास आज इतने मिलते हैं कि उनसे पापमय वृत्तियां यकायक उत्तेजित हो जाती हैं। प्रारंभ में पाप झिझक के साथ किया जाता है किंतु धीरे धीरे झिझक जाती रहती है और दुष्ट मन पाप को छिपाने का भी प्रयत्न नहीं करता। अनेक बार किशोर अपने गुप्त अंगों की सफाई यथोचित रीति से नहीं करते। वे उधर इतना कम ध्यान देते हैं कि गुप्त अंगों में मैल जम जाती है, फिर खुजली प्रारंभ हो जाती है, तत्पश्चात छोटी छोटी फुंसियां हो जाती हैं और हाथ अपने आप गुप्त अंगों का स्पर्श करता है। अनजान में ही बालक को उत्तेजना का साधन मिल जाता है। बालक बालिकाओं का सहशिक्षा हानिकर है। स्कूल और कॉलेजों में सहशिक्षा से हानि अधिक हुई है। छिपे छिपे विद्यार्थी घृणित से घृणित पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। कच्ची आयु में लड़के लड़कियों की संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ नहीं होती कि वे अपनी अप्राकृतिक कामोत्तेजना को संकल्प से दृढ़तापूर्वक शमन कर दें। इस उत्तेजना को शांत करने के लिए अस्वाभाविक उपायों का अवलंबन करने लगते हैं। हमारा आजकल का भोजन इतना अप्राकृतिक हो गया है कि उससे कामवासना कुमारी अवस्था में ही जागृत हो जाती है। मनुष्य जैसा भोजन करता है वैसा ही बन जाता है। राजसी भोजन से श्रृंगार रस उत्पन्न होता है, कामवासना उद्दीप्त हो जाती है। राजसी भोजन कौन कौन से हैं? अत्यंत उष्ण, कड़वा, तीखा, नमकीन, मिठाइयां, तेल से तले पदार्थ, गरिष्ठ वस्तुएं जैसे पकौड़ी, कचौड़ी, मालपुआ, मिष्ठान, खट्टा, चटपटा, लाल मिर्च से भरा भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, अंडा, शराब, चाय, कॉफी, सोडा, लेमन, पान, तंबाकू, गांजा, भांग इत्यादि राजसी भोजन हैं। इनके प्रयोग से नवयुवक का भी मन चंचल हो जाता है। मिर्च, मसाले, खटाई का उत्तेजक पदार्थ हैं। आज की दुनिया में इन भोजनों का बोलबाला है। आज फैशनेबल जगत में बीड़ी, सिगरेट का जितना प्रचार है शायद उतना कभी नहीं हुआ। छोटे छोटे बच्चे बीड़ी फूंकते दिखाई देते हैं, पान खाते हैं, सिनेमा के भद्दे गाने गाते फिरते हैं, कुचेष्टाएं करते फिरते हैं, अनुचित प्रेम संबंध स्थापित करने की चेष्टाएं करते हैं। यह सब कुछ अज्ञान में होता है। छोटे बालक पाप आचरण से अनजाने में ही भावी सुख, स्वास्थ्य, आयु की जड़ें खोखली कर डालते हैं। वीर्य नाश का फल उन्हें उस समय तो विदित नहीं होता, कुछ आयु बढ़ने पर मोह का पर्दा दूर होता है, वे अपने अज्ञान के लिए पश्चाताप करते हैं। प्रारंभ का कुसंग, छिपे पाप आचरण, जननेन्द्रिय का असंयम उन्हें गड्ढे में गिराता है। वे जीवन पर्यंत नहीं संभल पाते। रीढ़ में हमेशा दर्द बना रहता है, गठिया सताने लगता है, स्नायु संबंधी रोग फलते हैं। मृगी तथा अन्य मानसिक रोग हो जाने से मानसिक प्रगति बिल्कुल रुक जाती है। ऐसे बूढ़े नवयुवक आज गली गली में चूर्ण, चकनी, माजून, वीर्यवर्धक गोलियां ढूंढते फिरते हैं। अब भी समाज में कहीं कहीं बाल विवाह प्रचलित है। इसके कारण बालक बालिकाओं का बड़ा अनैतिक पतन हो रहा है। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि किशोरावस्था समाप्त होने से पूर्व किशोर को इस परिवर्तन के रहस्य को धीरे धीरे समझा दे। यह न समझे कि बालक स्वयं ही इन बातों को समझ लेगा। उसे सन्मार्ग पर चलाने का कार्य पवित्र और उत्तरदायित्वपूर्ण है। शिक्षक भी यथासंभव निष्प्रयोजन बातों, गंदे लड़कों, अश्लील पुस्तकों से अपने विद्यार्थियों की रक्षा करें, स्त्रियों में अधिक न बैठने दें, नशीली चीजों से बचावें, सिनेमा के भूत से दूर ही रहने की शिक्षा दें। वीर्यनाश से होने वाले भयंकर रोगों के बताने में जरा भी संकोच न करें। इसमें शर्माना, लजाना या वीतराग रहना मानव भावी नागरिकों का सर्वनाश करना है। यौवन से पूर्व ही प्रस्तुत पुस्तक में वर्णित ब्रह्मचर्य रक्षा के अनमोल नियमों से उन्हें भली भांति परिचित करा देना चाहिए। वीर्य रक्षा और पुनरुत्थान के अनूठे नियम। 1. सात्विक संकल्प। क्या गृहस्थ, क्या कुमार यदि यह अत्यधिक वीर्यपात का शिकार होकर रोगग्रस्त हो चुका है, सत्संकल्प से पुनः आत्म सुधार के मार्ग का पथिक बन जाता है। विश्वास फलदायक, आत्मोन्नति में विश्वास तथा दृढ़ संकल्प पुनरुत्थान के प्रधान तत्व हैं। आप आंतरिक मन से संकल्प कीजिए कि विषय भोग, वीर्यनाश, कामोद्रेक, वासना की पूर्ति, ये स्वास्थ्य, सदाचार, प्रकृति के विरुद्ध हैं। स्त्री प्रसंग करना कफन की तैयारी करना है। व्यभिचार, हस्तमैथुन, गुदा मैथुन, कुसंग, क्षण क्षण निर्बल, निस्तेज, दुखी तथा अल्पायु बनाने वाले हैं। वीर्य के एक बिंदु का नष्ट करना मानो अपनी जीवन शक्ति को गंदे नाले में फेंकना है। सभी अप्राकृतिक वीर्य नाश के मार्ग शरीर की कोमल नसों को निर्बल करने वाले, शरीर की चमक दमक कांति का नाश करने वाले हैं। अतः प्रत्येक तर्क से आप आंतरिक मन को समझाइए कि वह कामोपभोग में प्रवृत्त न हो, न वैसी बातें करे, न सोचे। पवित्र संकल्प कीजिए कि आप पुण्यात्मा, सदाचारी, वीर्यवान बनेंगे, जीवन की सर्वांगीण उन्नति करेंगे, बुद्धि तथा मन को शिव संकल्प, शुद्ध विचार, कल्याणकारी कामों में लगाएंगे और मन, वचन, कर्म द्वारा अद्भुत दैवी शक्ति प्रकट करेंगे। शुभ संकल्प उन पुष्ट विचारों का नाम है जिनमें कूट कूट कर विश्वास भरा हो। यदि आप हृदय से चाहते हैं कि निम्न जीवन की भूमिका से उठकर उच्च आध्यात्मिक जीवन पर चलें, तो उसके लिए दृढ़ संकल्प कर लीजिए। अपने संकल्प तथा विचारों से हम निष्ठिया श्रेष्ठ बनते हैं। यदि गुप्त रूप से मन में, आंतरिक गुप्त मन में कोई दबी हुई वासना या कुकल्पना छिपी रहे, तो वह भी साधक का पतन करने के चारों ओर उसी प्रकार वातावरण निर्माण करते हैं। मन में सत्संकल्प को सजाना, आंतरिक मन में दृढ़ता से जमाना वीर्य रक्षा का प्रथम सोपान है। पुण्य संकल्पों में पाप संकल्पों से कहीं अधिक शक्ति है। पाप स्वयं निर्बल है, वह सत्य है, खोखला और निर्जीव है। उसमें स्थायित्व नहीं, ठहराव नहीं। अतः पुण्य संकल्प स्वभावतः ही बुरे विचार, कुकल्पना, दुश्चिंताओं को परास्त करेंगे। पापमय भावना पुण्य संकल्प के समक्ष ठहर नहीं सकती। भगवान ने स्वयं कहा है, तुम्हारी यह चेष्टा कभी निष्फल न होगी, तुम्हारा अवश्य उद्धार होगा। आपके पुण्य संकल्प निश्चय ही पापमय वासना को दग्ध कर देंगे, कुबुद्धि, अज्ञान और कुविचारों को परास्त करेंगे, दुःस्वप्नों का नाश करेंगे। आपके हृदय में एक अंतः ज्योति है, ईश्वर का एक मंदिर है, अंतरात्मा की एक आवाज है, उसे विकसित कीजिए, उस दैवी ज्योति को जागृत कीजिए। यह विवेक जागृति ही उन्नति का राजमार्ग है। इस अंतर्ज्योति के जागृत होने से कामवासना, रतिप्रसंग, विषयोरभोग से स्वयं वैराग्य हो जाएगा। यह अंतर्ज्योति चैतन्य शक्ति है, अंतर्बल है। आज से ही दृढ़तापूर्वक संकल्प कीजिए, मैं कभी निंद्य वासना से सने हुए अपवित्र विचारों, गंदी कल्पनाओं की तरंगों को हृदय में ग्रहण नहीं करता। मैं प्रत्येक स्त्री को माता या भगिनी के रूप में देखता हूँ। इंद्रियां मेरे वश में है, मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ। वीर्य की रक्षा करता हूँ, शुभ सोचता हूँ, शुभ कर्म करता हूँ। कामवासना मनुष्य का पतन करने वाली है, वह विध्वंसक है, अतः मैंने उसे जड़ मूल से उखाड़ फेंकने का निश्चय किया है। मैं इस शुद्ध विचार द्वारा ही वीर्य रक्षा कर सकता हूँ। बिंदु को साधने वाला सप्त सिंधुओं को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। संपूर्ण संसार में ऐसी कोई स्थिति नहीं जिसे ब्रह्मचारी अपने वश में न कर सकता हो। वीर्य रक्षा के इस संकल्प में निश्चय ही मेरी विजय होगी। यह तत्व गांठ बांध लीजिए कि मनुष्य गंदे और निंद्य विचारों से पापात्मा और शुद्ध विवेक पूर्ण दृष्टि से पुण्यात्मा बनता है। अतः आप हृदय मंदिर में पवित्रता, प्रेम, प्रसन्नता, उत्साह, निर्भयता, सभ्यता और शांतिदायक सद्विचारों का आवाहन कीजिए। कामुक भावना स्वयं दग्ध हो जाएगी। टू काम का दहन। जिन्हें वीर्य रक्षा करनी है उन्हें काम वासना से घोर संघर्ष करना होगा। काम का उदय न होने दीजिए, क्योंकि एक बार उत्तेजना होने से यह वासना इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि मनुष्य का सर्वनाश कर सकती है। लोक लाज प्रतिष्ठा स्वास्थ्य वीर्य सबका पतन हो जाता है। अनेक बार देखा जाता है कि प्रत्यक्ष मैथुन से इतनी हानि नहीं होती जितनी मानसिक मैथुन से होती है। मानसिक व्यभिचार के कारण सूखी खाज, पकने वाली खुजली, दाद, फुंसियां, मुहासे, झाई, बगलगंध, दुर्गंध युक्त पसीना तथा अन्य गुप्त रोग फैलते हैं। मानसिक व्यभिचार से दूर रहने के लिए साधक को अत्यंत सतर्कता पूर्वक इन 8 प्रकार के मैथुनों से दूर रहना चाहिए। 1. स्मरण, नारी का पढ़ा हुआ वर्णन, देखे हुए चित्र की स्मृति, सुने हुए या सिनेमा में देखी हुई नर्तकियों अभिनेत्रियों का ध्यान चिंतन या स्मरण। सुंदर स्त्रियों के स्मरण से अनावश्यक उत्तेजना फैलती है, कामुकता के भाव उदय होते हैं, शरीर की गर्मी बढ़ जाती है और वीर्य जीवन शक्ति का नाश हो जाता है। 2. कीर्तन, स्त्रियों के रूप गुण और अंगों की चर्चा या वर्णन करना, गंदे गीत, सिनेमा के भद्दे गीत, श्रृंगारिक कविता पाठ, कजली होली के गीत, भद्दी बातें बकना, अपशब्दों का उच्चारण हमेशा के लिए त्याग दीजिए। 3. केली, स्त्रियों के साथ खेलना, अधिक रहना, अनावश्यक कार्य निकालकर उनके पास रहना, उनके संपर्क में रहकर गेंद, ताश, शतरंज, फाग खेलना, मनोविनोद करना, स्त्रियों की संगति में आनंद लेना, कामोत्तेजना बढ़ाने वाले हैं। इससे अनजाने में गुप्त मन कामुक हो जाता है और स्वप्नदोष प्रारंभ होता है। 4. प्रेक्षण, किसी स्त्री की ओर पापपूर्ण अथवा चोर दृष्टि से देखना। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि मन में कामवासना का प्रचंड तांडव मचा है। मन वासना की पूर्ति चाहता है। नीचतापूर्ण संकेत, औरतों को छिप छिप कर देखना, मोहित हो जाना, कामुक मन का प्रत्यक्ष लक्षण है। गुप्त मन की वासना अनेक मानसिक रोगों, भावना ग्रंथियों, पागलपन, अनिद्रा, बेधंगे व्यवहारों में प्रकट होती है। 5. गुप्त भाषण, स्त्रियों के पास बैठकर गुप्त भाषण करना, औरतों में पुनः आना जाना और उनके साथ एकांत में बैठने की इच्छा, बातचीत, औरतों के सौंदर्य की चर्चा, सान्निध्य की भावना, ब्रह्मचर्य नाश में पूर्ण समर्थ हैं। 6. संकल्प, श्रृंगार रस पूर्ण वाहियात, गंदे उपन्यास, कहानियां पढ़ना, वेश्याओं, अभिनेत्रियों के चित्र पास रखना, गंदी कविताओं का उच्चारण अथवा नाटक, सिनेमा में भद्दे कामोत्तेजक दृश्य देखकर उन्हीं को प्राप्त करने का संकल्प या इरादा करना, पतन का खुला द्वार है। 7. अध्यवसाय, किसी अप्राप्य या देखी सुनी स्त्री की प्राप्ति के लिए पापपूर्ण कोशिश, लोकलाज की परवाह न कर काम तृप्ति के प्रयत्न, वेश्यागमन या गंदी औरतों को पाने की इच्छा। 8. प्रत्यक्ष संभोग, अनुचित तरीकों से व्यभिचार। व्यभिचार चीरी, भय, लज्जा, झिझक के साथ किया जाता है, उसे छिपाने का प्रयत्न किया जाता है, उपयुक्त अवसर ढूंढने के प्रपंच मन में उठा करते हैं। ये पाप वृत्तियां धीरे धीरे मन में गहरी उतर जाती हैं और अप्रत्यक्ष मन में अड्डा जमा लेती हैं। वहीं से ये पाप वासनाएं अस्थिरता, खींचतान, आकर्षण विकर्षण का दौर चलाती हैं। जीवन धूर्तता, मायाचार और छल से भर जाता है। व्यभिचारी व्यक्तियों में चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट, आवेश, अतृप्ति छा जाती है। अमृत संयोग मस्तिष्क संबंधी विकार और मानसिक दुर्गुण उत्पन्न करता है। मानसिक उद्वेग में शरीर दिन दिन धुलता जाता है। असंयम के कारण अधिक वीर्यपात होता है। इस प्राण तत्व के अपव्यय के कारण अनेकों नवयुवक पाप के शिकार होते हैं। व्यभिचार से मनुष्य जाति की सामूहिक हानि है। अतएव यह प्रत्येक दृष्टि से त्याज्य है, अधर्म है। ब्रह्मचारी को मानसिक व्यभिचार से सदैव दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। ऊपर जिन 8 प्रकार के मैथुनों का उल्लेख किया गया है, ठीक उनके विपरीत कार्य करने चाहिए। अपने कर्म में बड़े सावधान रहिए। सावधान, यदि इनमें से कोई भी बात आप छिपे छिपे करते रहे तो नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। स्वास्थ्य, आयु और जीवन शक्ति सभी का नाश होगा। काम का उद्भव ही होने न दीजिए। कामांध पुरुष को स्त्री का सहवास संपर्क बड़ा भला मालूम होता है, बेचारा मोहवश होकर स्त्री संग करता है और फिर वीर्य नाश कर रोगी बनता है। विषयों से कभी मन तृप्त न होगा, स्वप्नदोष और बढ़ेगा और अकाल से ही जीवन दीप बुझ जाएगा। सच्चा कल्याण इसी में है कि यच काम सुख लोकें यच दिव्यम महत सुखम तृष्णाक्षय सुखस्य इति नारहतः शोधसी कलाम। अर्थात निष्कामता में, विषयों के वैराग्य में जो सुख भरा हुआ है, उसका 16वां हिस्सा भी सुख संसार के भोगों में व स्वर्ग सहित समस्त विषयों में तथा दिव्य ऐश्वर्यादि में नहीं है। अतः इस महापापात्मा काम रिपु को शत्रु मानकर तुरंत मार डालो, नहीं तो यह दुष्ट तुम्हें भक्षण कर जाएगा। सावधान। 3. कामश मन के उपाय। यदि काम रूपी शत्रु आपको विचलित करे तो तुरंत ही उसे मार डालिए। कामोत्तेजना प्रारंभ न होने दीजिए। मन में यदि वासना का तनिक भी संचार हो तो यह समझकर न रह जाइए कि कोई हर्ज नहीं, हम कोई गंदा काम थोड़ा ही करते हैं। सोचने, विचारने, कल्पना करने में क्या हानि है? नहीं, आपको मन से काम वासना के सब भाव, कल्पना, इच्छा एकदम निकालनी होगी। मन को विषयों की ओर से मोड़ना हो, उसे सात्विक विषयों में एकाग्र करना होगा, तभी आप रिपु से बच सकेंगे। यदि प्रयत्न करने पर भी गुप्तेंद्रियों में उत्तेजना हो तो काम शमन के लिए आप निम्न कार्य कीजिए। एस्टरस्क, आप तुरंत अपने वातावरण को परिवर्तित कर दीजिए। घर से बाहर निकल आइए, बाजार घूम लीजिए, सरिता, उद्यान, जंगल, पुस्तकालय, मंदिर इत्यादि में चले जाइए। इष्टमित्र के या किसी महापुरुष के ग्रह पर चले जाइए। एस्टरस्क, कुछ थोड़ा सा व्यायाम कर लीजिए। दौड़िए या कोई खेल खेलने निकल जाइए। एस्टरस्क, कुछ सात्विक ग्रंथ, कोई मासिक पत्र, भजन, उपदेश पढ़िए। मन को वैराग्य, सदाचार, भक्तिपूर्ण उपदेशों में लगाइए। तारांकन, कामोत्तेजना से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, श्वास गर्म आने लगती है, त्वचा का तापमान बढ़ जाता है, रक्त का वेग बढ़ जाता है। इस गर्मी के दाह से कुछ धातुएं पिघलकर मूत्र के साथ स्रवित होने लगती हैं। अतः थोड़ा सा ठंडा जल पी लीजिए, स्नान कीजिए या गुप्तेंद्रिय को धो डालिए। एस्टरस्क, यदि आप कोई उत्तेजक उपन्यास, कहानी या नाटक पढ़ रहे हैं तो उसे त्याग दीजिए, उसके स्थान पर कोई सदाचार का ग्रंथ पढ़िए। एस्टरस्क, अकेले मत रहिए, माता पिता भाई इत्यादि के पास चले जाइए और कुछ काम करने लगिए। खाली मन शैतान का ग्रह है, उससे काम लीजिए। एस्टरस्क, मन में वैराग्य की भावनाएं लाइए। किसी मृत स्नेही का स्मरण कीजिए, किसी लाश का मानसिक चित्र बनाइए। वैराग्य की भावनाएं काम शमन कर सकेगी। 4. पवित्र मातृभाव की दृष्टि। वीर्य रक्षा के लिए आप स्त्रियों की ओर से अपना दृष्टिकोण बदल दीजिए। कामोद्रेक तब होता है जब आप उन्हें पत्नी रूप में देखते हैं। आप उन्हें केवल माँ या बहन के रूप में देखा कीजिए। माँ शब्द कितना पवित्र है। माँ के सन्मुख आते ही हमारी पाप वासनाएं दग्ध हो जाती हैं। प्रत्येक स्त्री में ईश्वर की प्रतिमा देखिए। जब कभी किसी स्त्री के प्रति वासना पैदा हो, तुरंत अपनी माँ या ईश्वर की प्रतिमा उसमें देखिए। आपका मन लज्जा से भर जाएगा और तुरंत उस विनाशकारी विचार को त्याग देंगे। अपनी करनी पर तुम्हें बेहद शर्म आवेगी। यदि आप गृहस्थ हैं तो स्मरण रखिए कि केवल एक ही स्त्री आपकी पत्नी हो सकेगी। अनेक और व्यर्थ मन का लुभाने से व्यर्थ ही उद्वेग बढ़ेगा। मन में अस्थिरता, चंचलता की चातानी बढ़ेगी। अतः मन में उद्वेग की सृष्टि क्यों करते हैं, इस प्रलोभन से बचिए। प्रत्येक नारी को पवित्र मातृ दृष्टि से देखिए। जब आप किसी पाप के विचार तथा अशुभ कल्पना में प्रवृत्त होते हैं तो अतृप्त संयोग मस्तिष्क संबंधी विकार और मानसिक दुर्गुण उत्पन्न करता है। इच्छित तृप्ति न होने पर मन अन्य कार्यों के लिए बेकाम हो जाता है, कुचेष्टाओं में उलझा रहता है, अनिद्रा एवं दुःस्वप्न आते हैं। मानसिक व्यभिचार सर्वथा निंदनीय है। यह एक प्रकार का क्षय रोग है जो युवक को निर्बल, कांतिहीन और खोखला बनाया जाता है। रक्त की गति मंद और वीर्य को पतला कर देता है। परिणाम स्वरूप पागलपन, उन्माद, मृगी, नपुंसकता न्यूनाधिक रूप में प्रकट हो जाती है। एक विशेषज्ञ के अनुसार मानसिक व्यभिचार रक्तचाप की बीमारी उत्पन्न कर देता है। वासना भी मन से ही उत्पन्न होती है। यदि हम मन में पवित्रता रखें, दृष्टि में प्रत्येक नारी के लिए मातृभाव रखें तो मन, वचन, कर्म सभी अवस्थाओं में ब्रह्मचर्य पालन कर सकेंगे। अतः मन में कामुकता के किसी भाव, विचार या कल्पना को कदापि स्थान न दीजिए। 5. मानसिक व्यभिचार से बचिए। मानसिक संयम ब्रह्मचर्य का मूल है। यदि हमारा मन कामवासना के इशारों पर नृत्य करता रहेगा, कभी इस कभी उस स्त्री पर दौड़ता रहेगा तो मानसिक उत्पात कदापि न रुकेगा। रह रहकर बुद्धि लुप्त हो जाया करेगी और वीर्य रक्षा न हो सकेगी। ब्रह्मचर्य अथवा वीर्य रक्षा का यह अर्थ कदापि नहीं है कि मन से तो 24 घंटे व्यभिचार में लिप्त रहें, कल्पनाओं के गंदे स्थानों पर दौड़ते रहें और बाहर से ब्रह्मचारी बनने का अभिनय करें। मानसिक व्यभिचार का कुफल संक्रामक बीमारियों के रूप में मिलेगा। दूषित कल्पना कामोत्तेजना के कारण आपके सम्मुख स्वनिर्मित प्रतिमाएं सामने ला खड़ी करेंगी जो स्वप्नदोष प्रारंभ कर देंगी। कुत्सित कल्पनाओं, कुविकल्पों, गंदी गंदी अश्लील तस्वीरों, गंदी पुस्तकों, स्टेशन के बुक स्टॉलों पर बिकने वाली कामोत्तेजक प्रेम कहानियों, उपन्यासों को सदा के लिए छोड़ दीजिए। यदि आपकी कल्पना शक्ति किसी गंदी दलदल में फंसी है तो शुभ संकल्पों से उन्हें पवित्र कीजिए। मानसिक व्यभिचार और दुराचार का वायुमंडल जो सिनेमा की गंदी फिल्मों, नाटकों, अर्धनग्न नर्तकियों के नाचघरों द्वारा सभ्य जगत में बन गया है, तोड़ दीजिए। यदि आप गुप्त रूप से कामुकता की तृप्ति में लगे हैं तो उसे तुरंत छोड़ दीजिए। बाजीकरण औषधियां, बाजारों, दवा दारू, चटनी, भस्म का प्रयोग त्याग दीजिए। हमारी आत्मा स्वयं गंदी बातों, पापमय जीवन से बचना चाहती है। काम वासना की अप्राकृतिक तृप्ति तथा स्वप्नदोष के पश्चात हृदय में स्वाभाविक रूप से लज्जा, आत्मग्लानी, संशय, चिंता, क्लेश की भावनाएं जागृत हो जाती हैं। प्रारंभ में यह आत्मग्लानी अत्यंत तीव्र होती है। आत्मा बुरा बुरा कहती है, पार्श्विक वृत्तियां, केवल एक बार और वासना की बात सोच लूं, केवल एक बार, यह सोचते सोचते अधैपन प्रारंभ हो जाता है। पुनः पुनः काम वासना में लिप्त रहने से अंतरात्मा की आवाज भी उसके विरुद्ध नहीं उठ पाती। फिर मन का बांध टूट सा जाता है, गंदी बात सोचते बुरा नहीं लगता, व्यभिचार, मैथुन आदि भी साधारण सी बात प्रतीत होने लगती है, संपूर्ण जीवन वासना में बन जाता है, मन कुचेष्टाओं में सदैव फंसा रहने लगता है। काम कल्पना की आदत एक पिशाचिनी है जो मनुष्यों की संतानों को मार्ग भ्रष्ट कर देती है। अतः काम वासना का उद्भव ही न होने दीजिए, मन में वासना को स्थान ही न दीजिए। यदि उत्पन्न हो जाए तो तुरंत उसका गला दाब दीजिए। यह न सोचिए कि जरा इस दूषित कल्पना का और मजा ले लें, बाद में इसे दबा देंगे। एक बार इस पिशाचिनी के चंगुल में फंसे की फंसे, इसे यही मार डालिए। धिक्कार है उस पापमय जिंदगी पर जो मक्खियों की तरह पापों की विष्ठा के ऊपर भिनभिनाने में और कुत्ते की तरह विषय भोगों की जूना चाटने में व्यतीत होती है। उस व्यक्ति को धिक्कार है जो पर स्त्री कल्पना में निरत रहता है या गुप्त रूप से व्यभिचार में प्रवृत्त रहता है। खेद है उस पापमय जीवन पर जो कामवासना में उद्वेग तथा मानसिक आवेश में उलझा रहता है। वह जिंदगी घृणास्पद है जो कपट, धूर्तता, मायाचार, छल, अनुचित यौन संबंधों से युक्त है। जिनका जीवन इस वासना में स्वार्थों को पूर्ण करने की उधेड़बुन में निकल गया है, वे कितने अभागे हैं। सुर दुर्लभ मानव देह रूपी बहुमूल्य रत्न इन दुर्बुद्धियों ने कांच के टुकड़ों के बदले बेच दिया है। किस मुख से वे कहेंगे कि हमने यौवन का सदव्यव किया। इन कुबुद्धियों को अंत में पश्चाताप ही प्राप्त होगा। एक दिन उन्हें अपनी भयंकर भूल प्रतीत होगी, पर उस समय अवसर उनके हाथ से निकल गया होगा और सिर धुनने के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी प्राप्त न होगा। साधको, आत्मा को जगाओ, वासना को दूर भगाओ, उसकी केंचुली तोड़ डालो। ब्रह्मचर्य ही जीने योग्य जिंदगी है, यही वह जीवन है जिसे आदर्श और अनुकरणीय कहा जा सके। आपका जीवन प्रेम से, सत्य से भरा पूरा होना चाहिए। मानसी पूजा की आदत डालिए। आप ऐसा सोचिए कि परमेश्वर आपके सामने हैं। आप उनकी उपस्थिति में निरंतर रहते हैं। वे आपके कार्य ही नहीं, आपके मनोभावों, विचारों तथा गुप्त से गुप्त मंतव्यों को भी देखते हैं। आप उनसे कुछ छिपा नहीं सकते। अतः जो कुछ भी बुरे भाव अंतःकरण में लाएंगे, वे अपने पास रखकर आप पतित और कुपथगामी बनेंगे। आप मन में किसी घृणित विचार को स्थान ही न दीजिए कि आराध्य देव के समक्ष नीचा देखना पड़े। अपना जीवन एक खुली पुस्तक रखिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति उसे देख सके। उसमें कोई ऐसी गंदी बात ही न छोड़िए कि किसी के सामने आपको लज्जित होना पड़े। बाहर भीतर एक सा रहिए। पूजा और उपासना की अनेक विधियां हैं। आप अपने अंतःकरण में परमात्मा की किसी भी रूप को, गणेश, शिव, दुर्गा, महावीर को रख लीजिए। उस मूर्ति का प्रतिबिंब आप अपने अंतःकरण में देखा कीजिए। मानसी पूजा में किसी वाहन उपकरण, पुष्प, दीप, चंदन, अक्षत की आवश्यकता नहीं होती। बाहरी मूर्ति की पूजा तो आंतरिक मानस पूजा का प्रारंभ है। ब्रह्मचारी को किसी बाह्य पूजा की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती जितनी मानस पूजा की। मानस पूजा के लिए किन पुष्पों की आवश्यकता है? आपकी शुभ भावनाएं, शिव संकल्प, भद्रकल्पनाएं। इस पूजा के लिए कौन से धूप, दीप, चंदन चाहिए? आपके सुंदर कृत्य, प्राणी मात्र की सच्ची सेवा, त्याग, क्षमा और उदारता। जैसे यज्ञ में समिधा डालकर जलाते हैं, उसी प्रकार मन की कलमश इसमें भस्म कर दीजिए। अपने आराध्य देव में आप जिन गुणों का अस्तित्व समझते हैं, उनके मानसिक चित्र मानस पटल पर निर्माण कीजिए। फिर उस मानसी पूजा में इतने तल्लीन हो जाइए कि आप उसी में तदाकार हो जाएं। जैसी भी स्थिति में रहें, अपने व्यक्तित्व को अपने इष्ट उद्देश्य में पिराते रहिए। यह तदाकारिता ही सच्ची उपासना है। धीरे धीरे आपके गुप्त मन से ऐसी प्रेरणा होने लगेगी कि वासना, कुभाव और कुकृत्य की ओर आपकी प्रवृत्ति ही न होगी। आपकी पूजा सफल हो जाएगी और इच्छित फल हो जाएगा। 6. यह विलासप्रियता छोड़िए। श्रृंगार से काम उत्पन्न होता है, कुत्सित इंद्रियों को अनावश्यक उत्तेजना हो जाती है। आजकल का जीवन विलासप्रियता और फैशन से बुरी तरह भर गया है, जिसमें तन, मन, धन तीनों स्वाहा हो रहे हैं। हर तरह के ऐश आराम का चस्का मनुष्यों को लग गया है। वे आलसी और सुकुमार बन गए हैं। बनावटी, अस्वाभाविक रूप से दूसरों को भ्रम डालने के लिए आज मायाचार का बोलबाला है। यह दंभ नीति अहंकार, असत्य, ठगी, दुर्भाव और प्रपंच समाज में फैल रहा है। यह दंभ भड़कीली पोशाक के रूप में हम अपने चारों ओर फैला हुआ देखते हैं। ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल साधारण से हैं, अंग्रेजी पोशाक पहनकर आंशिक रूप से अपने बड़प्पन की धाक लोगों पर जमाना चाहते हैं। केवल वस्त्रों तक ही यह फैशन सीमित नहीं, मनोरंजन, खानपान, सजावट, वेश विन्यास में यह बैठ गया है। युवक अपने को अधिक से अधिक रूपवान सिद्ध करने के लिए खूब श्रृंगार करते हैं, पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, इत्र फुलिल, क्रीम, पाउडर का प्रयोग करते हैं। उनकी हर चीज पर विलासिता की छाप रहती है। सिनेमा ने तो समाज में अंधेर ही ढा दिया है। हर एक उभरता हुआ युवक अपने आप को अभिनेता जैसा बना ठना सुंदर चाहता है। किसी सुंदरी कल्पित ही सही के प्रेम पाश में आबद्ध होना चाहता है। प्रेम भी उपहास की वस्तु बन गया है। इस श्रृंगारपूर्ण वातावरण में आत्मसंयम बहुत कठिन है। ब्रह्मचर्य के लिए सादी रहन सहन अथवा सभ्य जगत के भोगविलास से विरक्ति अत्यंत आवश्यक है। विशेष सजधज, कामोत्तेजक वस्त्र, वेशभूषा, सुगंधित तेल, इत्र, हार मालाएं, श्रृंगार छोड़ देना चाहिए। विलास की अनावश्यक वस्तुएं आसपास से हटा देनी चाहिए, अन्यथा बार बार उनके उपयोग के लिए मन दौड़ता है। श्रृंगारपूर्ण वस्तुओं से न तो सहायता ही मिलती है, न आत्मसंयम ही। यह मन को बहुत पथ भ्रष्ट करती हैं। भ्रम में डालने के लिए बनाव श्रृंगार या झूठे आकर्षण के मायाचार को छोड़ दीजिए। तड़क भड़क भरी खर्चीली पोशाक के स्थान पर साधारण सादी रहन सहन अपनाइए। फैशन और विलासिता के रंगीलेपन से बचिए। भड़कीले फैशन के दम के मूल में अमेरिका या रूपवान होने का अहंकार छिपा रहता है। यह अहंकार आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वथा हानिकारक है। यदि उसका पोषण होता है तो वह अधिक मजबूत एवं परिपुष्ट बन जाता है। तब वह अनेक बुराइयों की सृष्टि करता है। विलासप्रियता से दम बढ़ता है। मेहनत न करने को जी चाहता है, अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयां बढ़ती हैं। फैशन माइनस परस्ती बाहर से देखने में साधारण सी बात प्रतीत होती है, किंतु काम रिपु को प्रोत्साहन देकर यह सर्वग्रासी घातक वस्तु बन जाती है। अतः भाइयों, इस व्यर्थ के अभिनय को छोड़िए, रूपहीनता का गंदा उपहासास्पद विज्ञान न कीजिए। आप सादगी पसंद कीजिए, अपने विचारों की भांति वेशभूषा को भी सात्विक रखिए। आध्यात्मिक दृष्टि से यह अनावश्यक एवं हानिकारक है। दृढ़ता पूर्वक आप संकल्प कीजिए कि खानपान, वस्त्र, आभूषण, विलास, सजावट, मायाचार में अपना बहुमूल्य समय व्यतीत न करेंगे, सदा सरल और उच्च जीवन व्यतीत करेंगे, विलासप्रियता, श्रृंगार या उत्तेजक वातावरण में न रहेंगे, अधिक सुख भोग की सामग्री एकत्रित न करेंगे, भोगविलास की बातों से सदैव दूर रहेंगे। दृढ़ता से शांत चित हो निम्न संकेत अपने सुप्त मन को दीजिए। मैं अब रात दिन शरीर के पोषण एवं श्रृंगार में ही अपना समय नष्ट नहीं करता। मुझे प्रतीत हो गया है कि वासनाओं को बढ़ाने और तृप्त करने से परम सुख की प्राप्ति नहीं होती। अब मैं तुच्छातितुच्छ इच्छाओं का गुलाम नहीं रहूंगा। क्षुद्र वासनाएं अब मुझे नीचे नहीं दबा सकती। क्षण भंगुर प्रलोभनों, भड़कीली, अस्वाभाविक, रंग बिरंगी, खर्चीला, विलासमय, फैशन माइनस परस्ती के पीछे पीछे अब मैं नहीं छटपटाता। सांसारिक दंभ, मायाचार, फैशन, वेश विन्यास, श्रृंगारमय वस्तुएं मुझे तंग नहीं कर सकता। धूर्त लोगों की बनावटी आकर्षण, विलास की मोहक वस्तुएं मुझे ब्रह्मचर्य से विचलित नहीं कर सकती। प्रबल से प्रबल दुष्ट आसुरी वासना का मुझ पर न आक्रमण हो सकता है और न वे मुझे दबा सकती हैं। उपरोक्त संकेत में रमण करो, पुनः पुनः प्रतिदिन प्रातःकाल अथवा सायंकाल एकांत स्थान में शांतचित होकर दृढ़ता से सरल सादे जीवन की उपरोक्त भावना पर मन लगाओ। तुम्हें स्वयं बनावटी विलासप्रियता से घृणा हो जाएगी। 7. सत्संग कीजिए। हम जैसे मित्रों, व्यक्तियों के वातावरण में निवास करते हैं, वैसे ही बनते हैं। हमारे मित्रों के विचारों का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से हमारे मनोजगत पर पड़ता है और हमारे अंतःकरण का निर्माण करता है। जैसे एक अतिसूक्ष्म बीज उचित वातावरण पाकर फल, फूल, पत्तियों से युक्त एक विशालकाय वृक्ष बन जाता है, ठीक इसी प्रकार सत्संगति या कुसंगति से सामाजिक क्रिया प्रतिक्रिया आघात से उचित तथा अनुचित वासनाओं का मानसिक प्रभाव हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। मनुष्य के मन में जितनी भावनाएं उठती हैं, उनमें से अधिकांश सज्जन या दुर्जन व्यक्तियों के संकेतों द्वारा प्रेरित होती हैं। दूसरों के ये संस्कार अनेक प्रकार सम्मिश्रित होकर हमारे मन में भावनाओं के रूप में उठा करते हैं। बाह्य चेतना के कारण उससे संबंधित भाव मन में परिपुष्ट होते और क्रियाओं के रूप में प्रकट होते हैं। सत्य संग से गुप्त मन में सत्य, प्रेम, न्याय, शांति, वैराग्य, आध्यात्मिकता इत्यादि सद्भावनाओं का उदय होता है। हम पवित्रता की ओर बढ़ते हैं, सद्भावों और सद्गुणों का विकास होता है। ब्रह्मचर्य के लिए साधक को दुर्जनों का साथ तुरंत त्याग देना चाहिए। कुसंग से नर्क की प्राप्ति होती है, मन में वासनाओं का तांडव प्रारंभ होता है और मनुष्य पापी, नीच और दुरात्मा बन जाता है। आधुनिक सभ्यता में माता पिता, अध्यापकों को अपने बच्चों या विद्यार्थियों के संग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गंदे और आवारा लड़कों के साथ रहकर बच्चे बिगड़ते हैं, नौकर पुष्प जैसे बालकों को पथ भ्रष्ट करते हैं, कुसंग का भूत आज हमारे युवकों को डस रहा है। श्रीमद् शंकराचार्य का वचन है, सत्संग से निःसंग की प्राप्ति होती है। निःसंग से निर्मोहत्व अर्थात विषयों में वैराग्य बढ़ता है, निर्मोह से सत्य का पूर्ण ज्ञान व निश्चय होता है और सत्तत्व से निश्चल ज्ञान से मनुष्य जीवन मुक्त होता है अर्थात इस संसार से तर जाता है। सत्संग का दायरा बहुत विस्तृत है। इसमें निम्न बातों का समावेश है। एक, ऐसे दुर्जनों का साथ छोड़ दीजिए जो पापी, कामी, नीच और दुरात्मा हैं, जो आपको गंदी बातें सिखलाते हैं या गंदे स्थानों में खींचते हैं। कामी पुरुष के साथ रहने से अवश्य कामवासना जागृत होगी। नीच पुरुष अपनी ही तरह अपने मित्रों को भी नीच, पापी, दुरात्मा बनाता है। दो, ऐसी पुस्तकों का साथ छोड़ दीजिए जिनमें कामोत्तेजक दृश्यों, चरित्रों, घटनाओं के वातावरण का वर्णन है। प्रेम कहानियां, गंदे उपन्यास, भद्दे गीत, सस्ते नाटक, सिनेमा के गानों की पुस्तकों का साथ त्याग दीजिए। पुस्तकें यदि उत्तम हों तो मनुष्य की उन्नति कर सकती हैं। यदि वे ही पुस्तकें गंदी हों तो पतन का मार्ग और भी ढालू कर देती हैं। आज ऐसों की ही भरमार है। सावधान, ऐसी किसी पुस्तक का विष काले सर्प की भांति महान दुर्गतिकर है। 3, ऐसे वातावरण, स्थान या वस्तुओं का संग त्याग दीजिए जिनसे उत्तेजना होती है। सिनेमा में न जाइए, नाटक न देखिए, व्यभिचार के अड्डों की तरफ कभी भूल कर भी न निकलिए। कुछ स्थानों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब नष्ट हो जाते हैं, परंतु सत्संग से चारों पुरुषार्थ अनायास ही सद जाते हैं। 4, ऐसे विचारों को मन से निकाल डालिए जिनसे मनहलोक नीरस, गंदा, शुष्क, धुंधला और वासना के अंधकार से पूर्ण हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, छल, पाखंड, असंयम, दुराचार आदि के कुविचार एक प्रकार के मानसिक शत्रु हैं, अतः वे मनहलोक में निशाचरों की भांति छिपे बैठे रहते हैं और अवसर पाते ही दलबल सहित निकल पड़ते हैं। हम किसका संग करें? इस प्रश्न के उत्तर में हम कहेंगे कि आप सज्जनों को ढूंढिए। विद्वान, महात्मा, योगी, शुभ चिंतकों के साथ रहिए, उनके उपदेश सुनिए, उन पर काया, वाचा, मनसा के आचरण कीजिए। जिह्वा से कभी गंदी बात न कहिए, कान से गंदी कामोत्तेजक बात कजली, होली, गालियां, भद्दे गीत न सुनिए, नेत्र से कामोत्तेजक चीजें, नाटक, वेश्याओं का नाच, सिनेमा, थिएटर, अभिनेत्रियों के चित्र, नग्न स्त्रियों के चित्र, गुप्तांग न देखिए, मन में कुविचारों, कुकल्पनाओं, कामोत्तेजक दृश्यों का स्मरण न कीजिए। जब नीच विषय विकार चित्त को विचलित करें तो सत्पुरुषों के पास जाइए, आपकी संपूर्ण नीच वृत्तियां दब जाएंगी। परमात्मा का शुभ चिंतन सब विकारों को दग्ध करने वाला अमोघ अस्त्र है। अतः अंतर्दृष्टि से उसी का मानसिक चित्र बाहर भीतर चहुं ओर देखते रहो। जो मनुष्य विषय का दृढ़ चिंतन करता है वह तद्रूप हो जाता है। तुम ब्रह्म का चिंतन, जाप, धारणा, ध्यान करोगे तो उसी के अलौकिक गुणधर्म तुम में विकसित हो जावेंगे और तुम सच्चे अर्थों में ब्रह्मचारी बन जाओगे। यदि आपको ज्ञानी महात्मा नहीं मिलते तो सद्ग्रंथों का संग कीजिए। यदि आप ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, आध्यात्म के अच्छे जीवन चरित्र पढ़ें तो संपूर्ण पाप वृत्तियां दब जाएं। सद्ग्रंथ इस लोक की चिंतामणि है। ग्रंथ हमारे अंतर्जगत का निर्माण करते हैं। हमारे अव्यक्त मन में यदि शुभ संकल्प, शुभ भावनाएं रहें तो उन्हीं के अनुसार हमारे कर्म बनकर पुस्तकों से आंतरिक अंधकार दूर होता है और अद्भुत दैवी शक्ति जागृत होती है। अच्छी पुस्तकों को अपना मित्र बनाइए। सुख में, दैख में, विषम परिस्थितियों में सद्ग्रंथ आपको मार्गदर्शन करेंगे, आंतरिक शांति देंगे, आचरण की सभ्यता सिखाएंगे। जिन्हें अपने वीर्य की रक्षा करनी है उन्हें निम्न पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। 1, श्रीमद् भगवद गीता। 2, योग वाशिष्ठ 3, दासबोध। 4, रामायण, ज्ञान वैराग्य प्रकाश 5, तत्व चिंतामणि जयदयालकृत 6, सत्यामृत सत्यभक्तकृत 7, भक्तों के जीवन चरित्र 8, तुलसी, सूर, नानक, कबीर, मीरा के काव्य ग्रंथ। आत्म संस्कार के विधान का स्वाध्याय एक प्रमुख अंग है। आत्म संस्कार संबंधी मासिक पत्र कल्याण, अखंड ज्योति, कल्पवृक्ष, गीता धर्म, मानव धर्म, गुरुदेव आज वृहद संख्या में ऐसे लेख दे रहे हैं जिनसे ज्ञान, वैराग्य, भक्ति बढ़ती है। जीवन चरित्र पढ़ने से हमें महान व्यक्तियों की उन्नति के रहस्य प्रतीत होते हैं। पढ़ना वही चाहिए जिससे कुछ शिक्षा मिले, शुभ कर्म में प्रवृत्ति हो, कुछ संयम आवे। अध्ययन सूर, तुलसी, मीरा, नानक, कबीर जैसे कवियों का करना चाहिए जो सद्वृत्तियों को जागृत करते हैं। सावधान, कोई बुरी कुवासनाओं को उत्तेजना देने वाली पुस्तक न पढ़ बैठना। उसका नशा न उतरेगा, वह तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। आजकल प्रेम को बदनाम करने वाली कुरुचिपूर्ण पुस्तकों का बड़े आकर्षक ढंग से विज्ञापन किया जाता है। पुस्तक खरीदते समय आप यह जांच कर लीजिए कि कौन पुस्तकें पवित्र और सारगर्भित हैं और कौन पुस्तकें अपवित्र और निःसार हैं। उत्तेजक कहानियां, प्रचलित संशयवाद, उद्वेगपूर्ण उपन्यास, श्रृंगारपूर्ण काव्य से ईश्वर के लिए दूर ही रहिए। जितने भी हो सके धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, चरित्र ग्रंथ, चरित्र को उन्नत करने वाले सद्ज्ञान ग्रंथ माला अखंड ज्योति कार्यालय से प्रकाशित के अनमोल ग्रंथ पढ़िए। ये ऐसी पुस्तकें हैं जो आपको यह बतलावेंगी कि कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए। आपकी धारणा में उत्तम ज्ञान भर देगी, कल्पना में उत्तम चित्र अंकित कर देंगी, श्रेष्ठ मनोभावों को उभार देंगी और हृदय को पवित्र और मृदुल भावनाओं से परिपूरित कर देंगी। पुस्तकों में वैसी ही क्रियमान जीवन शक्ति उत्पन्न करने का गुण होता है जैसी उनके लिखने वाला की आत्मा में था। पुस्तकों में उनके लेखकों की पवित्र बुद्धि का सार खींचकर रखा रहता है जिसके सेवन से ब्रह्मचारी में ज्ञान का संचार होता है। सत्संगी की परीक्षा कैसे हो? हम कैसे जाने कि आपने सत्संग महाव्रत प्रारंभ कर दिया है? श्री पथिका जी ने सत्संग की कसौटी यह बताई है, सत्संग प्रेमी सज्जन व्यवहार शुद्धि के लिए निरंतर विवेक पूर्वक सावधान रहते हैं। सतोगुणी प्रकृति दृढ़ रहने के लिए दूषित संग और तमोगुणी व रजोगुणी आहार नहीं करते। अशुद्ध विचारों से निरंतर सजग रहकर विरोध एवं परित्याग करते हुए शुद्ध सात्विक विचारों का हो अपने मन या मस्तिष्क में स्थान देते हैं। सत्संगी सदा शांत, प्रसन्नचित, उत्साही, गंभीर, दुखों के बीच में सहनशील और निर्भय रहता है। सत्संगी को मोह नहीं होता, प्रेम होता है। मोही वह है जो अपना सुख चाहता है, प्रेमी वह है जो दूसरे का सुख चाहता है, जो प्रेमास्पद को ही सुख देने के लिए सब कुछ करता है। सत्संगी में गरीबों व दुखियों की सेवा के लिए तन मन धन से तत्परता रहती है। रात दिन जाड़ा गर्मी वर्षा आदि द्वंद्वों में भी सेवा के अवसरों में वह आलस या प्रमाद नहीं करता। सत्संगी किसी की निंदा नहीं करता और निंदा करने वालों से बहुत बचता है, किंतु अपनी निंदा तथा निंदकों से विरोध या द्वेष नहीं करता क्योंकि अपनी निंदा से सत्संगी की उन्नति होती है। अनेक सद्गुणों का अभ्यास दृढ़ होता है, विनम्रता सहनशीलता और निरभिमान आदि सद्भाव पुष्ट होते हैं। सत्संगी अपनी सेवा नहीं कराता वरन करता है। कभी कभी वह दूसरों की प्रसन्नता के लिए भाव विकास के लिए ही दूसरों को भी अपने प्रति सेवा का अवसर देता है। सत्संगी में कामवासना का पूर्ण संयम रहता है, न गंदी बातें सोचता है, न दुष्कर्म करता है। वासना से उसे वैराग्य होता है। उसकी आत्मा ऐसी उच्च भूमिका में निवास करती है कि कामोद्वेग उसे होता ही नहीं। बाह्य एवं आंतरिक दृष्टि से वह स्वच्छ रहता है। खान पान का संयम, ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए मन वचन तथा शरीर तीनों की स्वच्छता की परम आवश्यकता है। मन का कलमश दूर करने के लिए उपयोगी नियम दिए जा चुके हैं। अब हम शारीरिक स्वच्छता पर विचार करेंगे। जैसा हमारा आहार होगा वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे। यदि हम कामोत्तेजक तामसी आहार करें तो हम कामोत्तेजक विचारों के शिकार बनेंगे, पाप कर्मों में हमारी प्रवृत्ति होगी और काम क्रोध मद अहंकार रोग आदि हमें पतन की ओर खींचेंगे। यदि हम सदा सात्विक अल्पाहार करेंगे तो पवित्र ब्रह्मचारी बनेंगे। भोजन की महत्ता हमें ब्रह्मचर्य रक्षा में न भूलनी चाहिए। अनेक व्यक्ति यह नहीं जानते कि रात्रि का उत्तेजक भोजन किस प्रकार चित्त को उद्विग्न करता है और स्वप्नदोष का कारण बनता है। ठूंस ठूंस कर हलुआ पूरी मिर्च मसाले वाले भोजन मनुष्य को मलिन आलसी विषयी निस्तेज और अल्पायु बनाते हैं। सादा व अल्पाहार करने वाला व्यक्ति निरोगी निर्विकारी उत्साही और तेजस्वी बन सकता है। अधिक भोजन करने वाला ब्रह्मचर्य धारण नहीं कर सकता। कामदेव पेटू मनुष्य को बुरी तरह पछाड़ता है। महीनों की संचित वीर्य संपत्ति कुछ क्षणों में नष्ट हो जाती है। मन और तन दोनों रोगी बन जाते हैं। स्वप्नदोष प्रायः रोज ही होने लगता है। केवल चटपटा स्वाद होने की वजह से ही बहुत सा भोजन कर लेने में हर प्रकार की हानि है। भोजन भी अधिक खर्च होगा और बचा हुआ पेट में नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करेगा। पेटू व्यक्ति का मन विषयी काम चिंतन वासना की तृप्ति की ओर पुनः पुनः भागता है। अधिक भोजन वृत्तियों को चंचल चित्त को विचलित और वीर्य को अपने स्थान से च्युत कर देता है। फलतः मन और तन दोनों विकारपूर्ण बन जाते हैं। ब्रह्मचारी को अपने भोजन पर तीव्र दृष्टि रखनी चाहिए। आहार की शुद्धि से सत्व की शुद्धि होती है, सत्व की शुद्धि से बुद्धि निर्मल और निश्चय बन जाती है। फिर पवित्र व निश्चय बुद्धि से मुक्ति भी सुलभता से प्राप्त होती है। जिह्वा वश में करना मन और शरीर को वश में करना है। सात्विक भोजन फलाहार, दुग्धाहार, मधु, तरकारियां, मूंग, गेहूं इत्यादि के प्रयोग से शांत रस उत्पन्न होता है, बुद्धि निर्मल रहती है, वासना पर अधिकार रहता है। राजसी भोजन कचौड़ी, पूरी, खट्टा, मिर्चयुक्त, लहसुन, प्याज, मांस, गांजा, चाय, भांग, मादक द्रव्य से मन कामी, वासना प्रिय, पापी और रोगी बन जाता है। तामसी भोजन बासी रसहीन चीजें, तेल की तली हुई चीजें, मिठाइयां, गरिष्ठ पदार्थ से विभत्स रोगादि उत्पन्न होते हैं। जो रस अधिक उग्र होता है, अन्य रस उसी के कब्जे में आ जाता है। ब्रह्मचारी का भोजन। भोजन के विषय में ब्रह्मचारी सावधान रहे, क्योंकि गलत चुनाव से न केवल बीमारियां ही उत्पन्न होंगी, प्रत्युत रक्त विषैला और मन विकारपूर्ण बन जावेगा, प्राण शक्ति का क्षय होगा और आयु कम हो जावेगी। कामोत्तेजक भोजन कदापि न कीजिए। मांसाहार कामोत्तेजक है। गोमांस, भैंस की चर्बी, भेड़ का दूध, मछली, कछुआ स्वभाव से ही अहितकर पदार्थ है। अधिक गुड़, शक्कर गर्मी उत्पन्न करती है। अत्यंत मिर्चों वाला, उष्ण, मीठा, तेल युक्त पदार्थ, प्याज, लहसुन, लाल मिर्च, उड़द की दाल, मसाला, चाय, काफी, कोको, पान, तंबाकू, गांजा, भांग, अफीम, चरस, चंदू, तामसी आहार है। ब्रह्मचारी को उन्हें छोड़ देना चाहिए। मांस खाने से आयु क्षीण होती है। अक्सर गठिया की बीमारी हो जाती है, रक्त विकृत होकर फोड़े फुंसी निकल आते हैं। मांस तमोगुणी है, शर्करा में पदार्थ हानिकर है। ब्रह्मचारी को हल्का, सादा, सुपाच्य भोजन करना चाहिए। प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ शाकाहार और फलाहार का प्रचार रहा है। ब्रह्मचारी अधिक से अधिक फलों तथा तरकारियां प्रयोग करें। हम देखते हैं कि जो पशु पक्षी प्राकृतिक भोजन करते हैं, वे स्वस्थ और दीर्घजीवी होते हैं। हमारे पुराने आचार्य मिर्च मसालों के पक्ष में नहीं हैं। कच्चा और प्राकृतिक आहार फल, दूध, मेवे, घृत, शहद, तरकारियां जैसे खीरा, ककड़ी, टमाटर, गाजर, अनार, आंवला, मुनक्का, खजूर, छुआरा, फालसा, खिरनी, नींबू, अंजीर विशेष हितकर हैं। अनाजों में लाल शाठी चावल, जौ, गेहूं, मूंग, मसूर, अरहर, सेंधा नमक ये उत्तम हैं। शाक तरकारियों में परवल, लौकी, ननुआ, बैंगन, भिंडी आदि पत्ती वाली सब्जियां जैसे पालक, मेथी, पातगोभी, मूली, मौसमी फलों से रक्त में क्षारता बढ़ती है और अनेक रोग दूर होते हैं। ये सात्विक आहार ब्रह्मचारी के लिए विशेष उपयोगी है। ब्रह्मचारी थोड़ा खाए और जो खाए उसे खूब चबा चबा कर, कुचल कुचल कर खाए, लार का अधिकाधिक मिश्रण करे। अधिक खाने वाला कभी वीर्य नहीं रोक सकता। अनेक व्यक्तियों की यह गलत धारणा है कि खूब दूध मलाई उड़ाने से नष्ट किया हुआ वीर्य पुनः बन जाता है। यह विचार नितांत भ्रांत है। वीर्य को बनाने में वही एक मास लगता है। अधिक गरिष्ठ भोजन से शरीर में और भी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। धातु के नाश से रक्त के जीवाणु कमजोर पड़ जाते हैं। अतः ऐसा भोजन वीर्य को और उछाल देता है। कुछ मूर्ख दवाइयों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। कोई भी दवाई तुरंत शक्ति या वीर्य पुष्टि नहीं प्रदान कर सकती। अधिकतर बाजारू दवाइयां ऐसा उत्तेजक गुण रखती है कि उससे खाने वाले को प्रारंभ में शक्ति आती हुई मालूम होती है, किंतु यह क्षणिक होती है। अतः ब्रह्मचारी को इन पौष्टिक दवाइयों से बड़ा सावधान रहना चाहिए। वीर्य तो सादे, सस्ते, स्वच्छ और स्वल्प भोजन से ही मिल सकता है, पर संयम की आवश्यकता है। सूखी रोटी भी हमें स्वास्थ्य, बल, उत्साह दे सकती है, यदि हम अन्न में ब्रह्म दृष्टि रखें। ब्रह्म की भावना से हम साधारण भोजन में से प्राण तत्व खींच सकते हैं। व्यसनों को त्याग दीजिए। ब्रह्मचारी को समस्त व्यसनों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनसे अनावश्यक उत्तेजना उत्पन्न होती है, रक्त में उष्णता बढ़ती है और वीर्य उछल पड़ता है। जितना आज बीड़ी, सिगरेट का प्रचार है, इतना शायद कभी भी नहीं रहा। तंबाकू प्रत्यक्ष विष है। एक विशेषज्ञ की राय है कि तंबाकू के सेवन से उत्तेजित होकर वीर्य पतला पड़ जाता है, पुरुषत्व क्षीण होता है, बिगड़ जाता है, नेत्र ज्योति मंद पड़ जाती है, मस्तिष्क व छाती कमजोर हो जाती है, खांसी, दमा बढ़ते हैं, आलस्य, कार्य में अनिच्छा, हृदय की धकधकाहट, व्यर्थ की चिंता व अनिद्रा बढ़ती है, मुख से बुरी गंध आती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व सामाजिक भयंकर हानि होती है। तंबाकू कहता है कि महाराज कली का मैं दूत हूँ, उन्हीं की आज्ञा से उस पवित्र चातुर्वर्ण्य को जिसे विधाता ने धर्माचरण के लिए बनाया है, बलपूर्वक नष्ट भ्रष्ट और एकाकार करने के लिए इस संसार में अवतीर्ण हुआ हूँ। ब्रह्मचारी को तंबाकू किसी भी रूप में भूल कर भी नहीं लेना चाहिए। इसके गुलाम बनने से पापों की एक सेना हमारे ऊपर आक्रमण करती है, चरित्र शिथिल हो जाता है और मनुष्य शराबखोरी और व्यभिचार की ओर झुक जाता है। सत्यासत्य, नीति अनीति का विवेक नष्ट हो जाता है। अन्य मादक पदार्थों की अपेक्षा तंबाकू से बुद्धि को अधिक हानि होती है। इंद्रिय उत्तेजना, स्मरण शक्ति को हानि, चित्त की चंचलता और मस्तिष्क के अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। अतः इस कालकूट से ब्रह्मचारी को बड़ा सावधान रहना चाहिए।